So, hey there, what is going on? I'm Arjun Singh and welcome to my podcast, hashtag That Filmiga, which is India's most creative podcast. And बहुत time बाद नया podcast आ रहा है, तो sorry थोड़ा सा delay हो रहा था, but आज हम लोग साथ हैं Mr. Shrey sir, और he's a social entrepreneur of Grow Diesel. बहुत मस्त इंसान है, TEDx speaker भी हैं, तो आइए इनके बारे में थोड़ा बहुत और इनसे ही जान लेते हैं और उसके बाद हम लोग अपना podcast अपने style में शुरू करेंगे.
Thank you so much, Aryan.
Welcome to our show.
Thank you, buddy. And first of all, congratulations for restarting your podcasting once again. And kabhi-kabhi bahut ho jata hai ki hum ek initiative shuru karte hain, then break aa jata hai. But I am really happy that you are continuing it. So, thoda bahut introduction I'll give about myself. So, my name is Shrey Saxena, and I'm a second generation social entrepreneur at Grow Diesel. So, at Grow Diesel, hum do problems solve kar rahe hain. One is waste elimination and second is biofuel generation. So in very simple terms, we convert waste into wealth. So jis cheez ko aap kachra samajhte hain, we make a high quality product out of it, which is biofuel, jisse hum gaadiyan chala sakte hain, jisse hum cooking ke liye istemal kar sakte hain, jisse hum electricity generate kar sakte hain, and we can even do organic farming from the byproducts that we make. So, बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने आपके ऑडियंस को बता दिया that what we do at Grow Diesel.
Okay, so like how do you like recycle the substances and make a fuel?
So, Aryan, मैं बहुत ही सिंपल टर्म्स में ऑडियंस को बताना चाहूंगा that दो तरीके का कचरा होता है. एक होता है हमारा सूखा कचरा, एक होता है हमारा गीला कचरा. तो जो हमारा गीला कचरा होता है उसको उससे हम बनाते हैं बायो पीएनजी, बायो सीएनजी. And that bio-PNG and that bio-CNG can be used for cooking purpose. उससे हम गाड़ी चला सकते हैं, उससे हम electricity generation के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, and उसके by-products से हम organic farming के लिए उसे इस्तेमाल कर सकते हैं.
Okay.
Talking about the सूखा कचरा, the dry waste. So जो dry waste होता है, dry waste में हमारे पास plastics आ जाते हैं, metals आ जाते हैं, then all kinds of materials we get, glass and all. So, उसमें जो प्लास्टिक होता है, सो प्लास्टिक से वी मेक ग्रीन डीजल. सो अगर मैं बहुत ही सिंपल टर्म्स में बताऊं, जो ये प्लास्टिक होता है, इट इज अ क्रूड प्रोडक्ट. सो रिफाइनरी में से क्रूड ऑयल निकलता है, जो उसका बाय प्रोडक्ट होता है, उससे प्लास्टिक बनता है. सो उस प्लास्टिक को हम बहुत ही डीपोलमराइज करके उसे वापस ऑयल फॉर्म में एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, एंड देन उसको हम रिफाइन करके वी मेक ग्रीन डीजल आउट ऑफ.
तो अच्छा, ये जैसे जावा जो आपने बताया कि इससे आप सीएनजी, आप इससे फ्यूल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, तो क्या ये जो अभी इस टाइम की इस करंट सिचुएशन में जो पेट्रोल और डीजल कंजप्शन है, क्या ये इसको सस्टेन कर सकता है? सस्टेन सेंस मतलब वो आप समझ रहे हो ऑडियंस, ठीक है, थोड़ा सा नर्वसनेस हो रही है.
डोंट बी नर्वस, बी कैंडिड. आई जस्ट हैड पिज़्ज़ा.
मैं बेसिकली ये पूछ रहा था कि जैसे जो अभी इस टाइम पे डीजल और पेट्रोल यूज हो रहा है, क्या रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ग्रो डीजल जिस पे वर्क करती है, क्या ये उसको रिप्लेस कर सकती है फ्यूचर में? और इस रिन्यूएबल एनर्जी का फ्यूचर क्या होगा आपके पास?
सो आई विल गिव यू अ स्टैटिस्टिक. फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स टॉक अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी एज अ होल. सो रिन्यूएबल एनर्जी हमारे पास सोलर आ जाता है, हमारे पास विंड आ जाता है, हमारे पास बायोफ्यूल आ जाते हैं. सो ऑल दीज आर अ फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. एज एन इंडस्ट्री रिन्यूएबल एनर्जी की आपसे बात करूं, सो फ्रॉम ईयर 2010 टू ईयर 2020 देर हैज बीन अ ड्रास्टिक राइज इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर. टू गिव यू सम फिगर्स, अपटिल 2010 द एनर्जी जनरेशन हैपनिंग फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज इन इंडिया वॉज जस्ट 5% ऑफ द टोटल एनर्जी कंजम्पशन. हम इंडिया में जितनी भी एनर्जी एंड पावर कंज्यूम कर रहे थे उसका सिर्फ 5% रिन्यूएबल एनर्जी से आ रहा था, बाकी सब नॉन रिन्यूएबल जगहों से आ रहा था. फास्ट फॉरवर्ड टू ईयर 2020, द करेंट एनर्जी कंजम्पशन ऑफ आर कंट्री फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज हैज राइजन बाय 30%. सो करेंटली 35% ऑफ इंडियाज एनर्जी इज बींग मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्सेज. सो इन जस्ट 10 years we have been able to achieve 1/3 of our power generation from the renewable energy sector. Now, jo ye dramatic rise ho raha hai, it makes a lot of financial sense, it makes a lot of climate sense, and that is why bahut hi drastically renewable energy pe bahut sara kaam ho raha hai.
Okay.
Especially if we talk about a country like India, India is putting a lot of emphasis in the renewable energy sector. Now, coming specifically to the biofuel sector, you asked me a question, jo abhi current scenario hai, jo hamari current vehicles hain, ya fir hamari jo bhi current industrial usage hai fuel ki, wo abhi traditional fossil fuel pe bahut dependent hai, which you absolutely you were absolutely right about it. But in year 2018, there was a policy that came out, and that policy was National Biofuel Policy 2018. In that policy, government has put a lot of emphasis on the biofuel sector. And uska ek bahut bada major reason ye hai that currently India imports more than $100 billion of crude oil every year. Itna hamara consumption hai, $100 billion se bhi zyada. So which is a very very big amount. Now imagine this, agar hum yahi fuel apni country mein khud hi produce kare, khud hi use kare, we will be able to save so much money that we are giving to Arab countries and other oil nations jinse hum abhi oil khareed rahe hain. So if we are able to be independent in our fuel consumption and in our fuel production, our whole economy will transform. And after 2018 National Biofuel Policy, a lot of things have started to happen in the positive side. So to answer your question in very straightforward terms, yes, biofuels will replace fossil fuels for sure in the manufacturing, the industrial sector and in the transportation sector as well.
Okay. Achha, ek question bahut time se like mind mein strike kar raha tha. Grow diesel aur aapka kya connection hai aur kaise ye connection hua tha? इस बारे में थोड़ा सा आप ऑडियंस को एक्सप्लेन कर दो, उसके बाद थोड़ा सा चिल करेंगे, मूड लाइट करेंगे, क्वेश्चंस पूछता हूं, जो भी आने दो पॉडकास्ट
में. डेफिनेटली. सो ग्रो डीजल वाज स्टार्टेड बाय माय फादर इन ईयर 2001, एंड बिफोर दिस ही वाज वर्किंग विद द यूनाइटेड नेशंस, एंड हिज जॉब वाज टू ट्रैवल द वर्ल्ड एंड ब्रिंग ऑल द एनवायरनमेंट एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इनटू इंडिया. So in year 2000, he was in London. He was in one of the conferences, and he stumbled upon a session on renewable energy. And that's when he heard about biofuels for the very first time. And he started researching about biofuel sector. And then finally he came back, he started this organization, Grow Diesel. And since then we have worked on a lot of projects in the biofuel sector. I started working with Grow Diesel since year 2014 when I was in first year of my college, and I joined the organization full time in year 2018. So technically it's been almost 8 years I've been working with my organization, but if you ask me full time, it's been close to 4 years.
अच्छा, जैसे कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो इंडिया में ऐसा शायद होता है, मुझे नहीं पता, कि उसको अडैप्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है यहाँ की जो पब्लिक होती है. जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जीज हैं, जो फ्यूल यूज़ होता है, होने जा रहा है अभी, जिसका एक बूम आने वाला है व्हीकल्स में, तो क्या आपको लगता है कि इसमें लाइक थोड़ा टाइम लगेगा लोगों को अडैप्ट करने में, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी अब आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रहे हैं, तो इस बारे में व्हाट डू यू थिंक, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और द व्हीकल्स विच यूजेस रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी?
I'm really glad that you brought that question, because ये मेरे को question बहुत बार पूछा जाता है, that will it be biofuels or electric vehicles? And a lot of people think that these are mutually exclusive things, कि अगर electric vehicle exist करेंगे, biofuels exist नहीं करेंगे. Let me give you a perspective. In a country like India, the majority of the places do not receive electricity for 24 hours straight. फुल डे के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती है. तो कंसिडरिंग ऑल दीज चैलेंजेस, वी नीड टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ बायोफ्यूल्स. इंडिया बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री, मैंने आपको बताया दैट हम जो अपना बायोफ्यूल प्रोड्यूस करते हैं, वी मेक फ्रॉम एनी काइंड ऑफ वेस्ट. नाउ इंडिया बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री वेयर 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बहुत सारा एग्रीकल्चर वेस्ट हमारी कंट्री में. Now, if we are able to convert this agriculture waste into biofuel, that biofuel can be used to generate electricity, and that electricity can be used to power the electric vehicles. Right. So there are two things. One is the electric vehicle charging infrastructure we are talking about. But in a country like India, before a electric vehicle charging system, we need to have an electric, we need to have an energy production system. So energy production system jab hamara intact hoga, it can be used for n number of applications. वो हमारे घरों के बिजली के लिए इस्तेमाल हो सकता है, वो हमारी गाड़ियां चार्ज करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, वो हमारी इंडस्ट्रीज में यूज हो सकता है. So biofuel for a country like India is very important. India being an agriculture state, and अगर हम उस agriculture waste को अच्छे से tackle कर लें और उसको biofuel में convert कर लें, उस biofuel से हम कुछ भी कर सकते हैं. हम अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी उस बायोफ्यूल से चार्ज कर सकते हैं इनडायरेक्टली. उससे पहले इलेक्ट्रिसिटी बनाई एंड देन उससे इलेक्ट्रिसिटी से हमने व्हीकल चार्ज कर. तो बोथ दीज थिंग्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. सेकेंडली इफ आई वुड लाइक टू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ब्राजील. ब्राजील इज द नेशन दैट वी शुड लुक फॉरवर्ड टू, जिन्होंने बायोफ्यूल पे बहुत ही अच्छे से वर्किंग करी है. And practically, Brazil में बहुत सारी चीजें हो रही हैं in biofuel sector. They are the leaders in biofuel. That is the leader country. So they have introduced this concept of flexi engines. So flexi engines क्या होते हैं? जो हमारी गाड़ी के इंजन होते हैं, जब आप flexi engine लगाओगे तो आप उसमें बायो फ्यूल डाल दो, आप उसमें नॉर्मल फॉसिल फ्यूल डाल दो, या दोनों को मिक्स करके डाल दो, आपकी गाड़ी चल जाएगी.
ओके.
तो नितिन गडकरी सर जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर हैं ट्रांसपोर्ट के, उन्होंने फ्लेक्सी इंजन पे अभी बहुत रिसेंटली वर्किंग करना शुरू करी है एंड वी सी दैट इम्प्लीमेंटिंग एंड वी सी दैट हैपनिंग वेरी सून इन आवर कंट्री.
अच्छा, कल रात को मैं आपको एक पॉडकास्ट बोल रहा हूँ, टेडएक्स देख रहा था, तो उसमें मैंने आपके रेडबुल वाली स्टोरी सुनी थी, तो उस बारे में आप कुछ लाइक बता सकते हैं? हम लोग की ऑडियंस को बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं बता दूँ आप लोगों को.
Redbull has played a very very important role in my life, I would say. Every 2 years Redbull organizes this competition by the name of Can You Make It. So in that competition there are around 200 teams which get selected from all over the world, and we are thrown in some random city of Europe, and we had to reach some end point. So the idea is that we cannot use our mobile phones, we cannot use our money, and we cannot use our credit or debit cards. Everything is taken away. So our starting point was Madrid in Spain, and we had to reach Amsterdam in Netherlands, and we had to cover 4 countries in a span of I think 7 to 8 days, and we had to do everything by using Red Bull cans as currencies. So हमारे बीच बीच में चेक पॉइंट होते थे, हर चेक पॉइंट में हमें रेड बुल के फ्रेश कैंस मिल जाते थे, एंड वी यूज्ड टू ट्रैवल विद दोस कैंस. हम लोगों को बोलते थे आप हमें
गिफ्ट दो, हम आपको रेड बुल देंगे.
हम लोगों को बोलते थे आप हमें हम आपको रेड बुल देंगे, आप हमें खाना दो, आप हमें ट्रैवल करने दो,
हमें लिफ्ट दे दो,
हमें आज रात सोने की जगह दे दो. So during our journey, there were a lot of lessons that we learned that in a place like Europe, we were able to spend and we were able to travel. So we found really good people. So one important lesson that I would like to share from this particular journey, that if you are in a particular journey and if you've decided to reach there, you'll find good people during that journey who will help you make that happen. So, मेरी बहुत बड़ी लर्निंग रही थी. एंड एक मैं बहुत अच्छी चीज बताना चाहूंगा, विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल रूपी, प्रॉब्ली वो एक ऐसा टाइम था व्हेन आई हैड द हार्डेस्ट लाफ ऑफ माय लाइफ. सो आई वाज विद टू ऑफ माय फ्रेंड्स तमन्ना एंड अंकित, हम तीनों साथ गए थे, इंडिया से हम सेलेक्ट हुए थे एंड एक बॉम्बे की टीम सेलेक्ट हुई थी आउट ऑफ ऑल द एंट्रीज, एंड वी रियली हैड अ किक-ऐस टाइम. मतलब बहुत मजा आया हमें हमारी आपस में बहुत लड़ाई भी हुई. And we met really good people, and it was a pretty, pretty refreshing and a pretty new experience.
Nice. अच्छा वैसे मैं आपके podcast में बहुत सारी कहानियाँ भी सुनाता हूँ, तो like अच्छा जैसे आप बता रहे थे तो मैं imagine कर रहा था, तो एक चीज़ आपको छोटी सी देता हूँ, आप imagine करके बताना. तीन लोग गए थे आप लोग टीम में, सब मोनेटाइज कैमरे सब होंगे आप लोगों के पास जो आपको शूट कर रहे होंगे कंटिन्यूसली, कि इनकेस अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो आपके साथ एक बैकअप टीम भी होगी. जस्ट इमेजिन योर सेल्फ देयर without support of that Red Bull brand, without money, हाउ विल यू लाइक फील उस टाइम पे, आप क्या फील करोगे कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, ना मेरे पास कोई भी करेंसी है जिसको मैं इनके एक्सचेंज ट्रैवल कर सकता हूँ. क्या कभी भी उस टाइम उस जर्नी में जो कंपटीशन के लिए गए थे तब ऐसा टाइम पॉइंट टाइम आया था?
राइट. सो रेडबुल ने हमें क्या करा था, रेडबुल ने हर टीम मेंबर को एक डिवाइस दिया था. एंड द कैच वाज कि अगर कहीं भी आप कहीं फंसो एंड इफ यू प्रेस दैट बटन देयर विल बी पीपल हु विल बी देयर फॉर योर हेल्प. आपकी लोकेशन वगैरह सब उनके पास है बट यू विल बी आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन. नाउ आई टेल यू वन इंसिडेंट क्या हुआ था. हम मैड्रिड क्रॉस कर रहे थे बस में. देयर वर फ्यू गुड पीपल हु हेल्प्ड अस विद द टिकट्स ऑफ द बस. तो ऐसा होता है कि बस कहीं जा रही होती है, बीच में मिड पॉइंट पे कहीं रुकती है दूसरी सवारियों को उतारने के लिए, दूसरे लोगों को उतारने के लिए. तो बीच में बस थोड़ी देर के लिए रुकी एंड मैंने अंकित को बोला यार आई नीड टू गो टू वॉशरूम, इट्स वेरी अर्जेंट, आई हैव टू गो. तो आई वेंट, मैं वॉशरूम गया एंड व्हेन आई केम बैक आई सॉ कि बस जा रही है, बस लेजिट निकल चुकी है. मैं बस के पीछे भाग रहा हूँ एंड बस जा चुकी है. एंड मैं सोच रहा हूँ कि मेरे कैसे दोस्त हैं, बस वाले को रोका क्यों नहीं उन्होंने. तो उस टाइम पे इट वाज कि अब क्या करा जाए, अब क्या करा जाए. तो व्हाट हैपेंड, रेडबुल ने एक हमें फोन दिया था टू कवर आवर जर्नी एंड एवरीथिंग. एंड वो फोन भी उनके पास था, मेरे पास कुछ भी नहीं था. कुछ मेरे पास ना एक रुपए था, कुछ भी नहीं था मेरे पास, पर वो एक सेफ्टी डिवाइस था. बट मैं पूरे टाइम में सोचा था कि मैं वो दबाना नहीं चाहता था बिकॉज मैंने दबा दिया तो दैट वॉज एन ईजियर ऑप्शन. ठीक है, मेरे को लेने वगैरह आ जाते हैं बट माई फ्रेंड्स वुड हैव बीन आउट, आई वुड हैव बीन आउट. सो आई थॉट कि ऐसा क्या करूँ मैं कि मैं कॉम्पिटिशन में बाहर भी ना हो एंड आई रीच देम. तो आई न्यू द एंड पॉइंट कि वो बस कहाँ जाने वाली है. तो मेरे को एक जेंटलमैन मिला, ही वॉज नेटिव ऑफ स्पेन ओनली. एंड मैंने उन्हें बताया, ही वॉज ऑन अ बेंच वहाँ पे बैठे हुए थे पार्क में. आई वेंट देयर एंड आई सेड ही वाज स्मोकिंग एंड मैंने कहा हाय सर. ही सेड हे बड़ी व्हाट्स अप. सो मैंने उन्हें बताया दैट सर ऐसा ऐसा है, मेरी बस छूट गई है एंड माई फ्रेंड्स आर देयर. तो मेरे पास ना एक कार्ड था, नेटबुल ने एक हमें कार्ड दिया था जिसमें सेंट्रल कमांड का फोन नंबर था. तो आई रिक्वेस्टेड हिम, आई जस्ट वांटेड टू मेक अ फोन कॉल एंड इट विल बी रियली ग्रेट इफ यू कैन हेल्प मी आउट. तो ही सेड या दैट्स कम्प्लीटली ओके. तो उन्होंने मेरे को फोन डायल करने को बोला एंड आई कॉल्ड रेडबुल टीम एंड मैंने उन्हें बोला दैट आप मेरी टीम को फोन करके इन्फॉर्म कर दो दैट डू नॉट प्रेस दैट बटन, आई विल बी देयर समहाउ एंड मैं पहुंच जाऊंगा, मेरी टेंशन मत लो आप, उनको बोल दो. तो दे कॉल्ड माई टीम मेट्स, रेडबुल ने जो हमें एक फोन दिया था उसे उन्होंने कॉल बोला, बोला ही सेफ एंड एवरीथिंग एंड ही सेड कि वो पहुंच जाएगा इधर घंटे में, ही रीच, डू नॉट प्रेस दैट SOS बटन. So that gentleman, he helped me with my train tickets. So instead of bus, now I was going with from a train. So मैं वहाँ पे पहुँचा. I met my friends there, जो मेरे teammates थे. And yes, I think उस point में मुझे एक point पे लगा था कि maybe यहाँ पे I'm out of the competition and now I've just lost it. But then I think that if there's a will, there's a way. ये डिसाइड कर लिया था कि कंपटीशन से आउट तो नहीं जाना. आई हैव टू फाइंड समवन हु विल हेल्प मी इन दिस जर्नी. सो आई फाउंड अ ग्रेट पर्सन. सो या दैट्स ऑल अबाउट इट.
भाई और एक चीज सुना भी है मैंने, सफर का मजा ज्यादा होता है.
एब्सोल्युटली
राइट. अगर आप लड़की होते तो थोड़ा सा आसान हो जाता ना ये सफर. नहीं लाइक इमेजिन थोड़ा लिफ्ट लिफ्ट में.
सो आई विल टेल यू व्हाट, हमने भी यही सोचा था एंड तमन्ना इफ यू आर लिसनिंग, हमने तेरे को टीम में इसलिए ही लिया था. बट ऑनेस्टली इतना इट डिडंट वर्क आउट मच. हमें स्पेन से निकलने में इतना टाइम लग गया था डिस्पाइट तमन्ना बीइंग विद अस. बट यस आई थिंक कहीं ना कहीं उसका एक एडवांटेज होता है एंड इट हैज अ साइकोलॉजिकल थिंग अटैच्ड टू इट दैट people are able to, when especially when you are dealing with strangers. So koi bhi hum live there tha, of course we found a lot of people but at the same time we found a lot of rejections also.
Right,
hame agar ek banda live deta tha usse piche hamare 20 logon ne mana bhi kiya hota tha. Hum to wahan pe board le khade ho jate the ki next destination ka naam likhte the Paris aur khade ho gaye wahan pe. Ab gaadiyan to ja hi ja rahi hain तो जनरली मैं और तमन्ना खड़े होते थे एंड कभी कभी अंकित भी हो जाता था एंड दे वर प्रॉब्ली 10-20 कार्स वर पासिंग बाय एंड उनमें से प्रॉब्ली एक जना रुक जाता था. सो देयर इज अ साइकोलॉजिकल फैक्टर दैट इवन बिफोर हेल्पिंग समवन एंड स्पेशली स्ट्रेंजर्स ड्यूरिंग द टाइम everyone has their own evaluation,
right?
So a female teammate definitely helped us with that credibility, that short term credibility and all. But yeah, there were a lot of teams jahan pe there were just all male teams and especially jo Mumbai ki team thi, but they did exceptionally good. So I won't say that the whole credit goes to that, but yeah, I think we did get an advantage for it.
Right. Okay. अच्छा थोड़ा सा आगे हम लोग सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा सीरियस क्वेश्चंस आएंगे अभी बीच में, तो आर यू रेडी?
हाँ यार,
आर यू रेडी?
वो तो क्वेश्चन बताएंगे आपके.
अच्छा स्टार्ट करते हैं आपके कोविड वाले वाली स्टोरी से जो आपने बताई थी. लाइक मैंने पूरा टेडेक सुना था आपका, तो वो एक इंसिडेंट मुझे काफ़ी लाइक इम्पैक्टफुल लगा था आपकी लाइफ में, आपके थॉट प्रोसेस में, तो उसके बारे में आप प्लीज थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को शेयर.
So
and how did it affected your life?
The COVID journey,
yeah, that phase. Because बहुत गंदा होता है.
True. So I think in March 2020, the whole world came to a standstill due to COVID. And during that time, even our business operations were affected. But we have an NGO. Okay, so under that NGO, we do a lot of initiatives, especially related to environment and few initiatives we were doing for healthcare projects, healthcare purposes. So what happened during that time in April, we were contacted by District Magistrate of South Delhi, and they were looking for a solution to increase the COVID testing of the citizens of Delhi. But the catch was they were looking for something innovative, and the priority was ki jo unke medical workers hain wo safe hone chahiye, jo frontline workers the, kyunki wohi agar infect hone lag rahe the us time pe jo test karne jaate the, unhe infection hone laga tha, and unhe 10 din mein ek solution chahiye tha, and unhone ek cheez boli thi, hum aapko paise nahi denge, hame 10 din mein solution bhi chahiye,
paise nahi denge.
हमें सोल्यूशन भी चाहिए एंड आपको डिलीवर भी करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे फादर की एक हैबिट है दैट कोई भी चैलेंज आता है ना, ही सेज चैलेंज एक्सेप्टेड. फिर चैलेंज तो एक्सेप्ट कर लिया. रात को आई थिंक रात के 9-10 बजे फोन आया था ऑफिस से उनके. अब क्या हुआ, पापा ने चैलेंज तो हाँ बोल दिया, बट हमने सोचा क्या करें, तो मैंने पापा ने डिसाइड करा दारू पी गया. तो वी डिसाइडेड कि पापा ने विस्की निकाली एंड पापा ने एक एक पैक बनाया, फिर हमने पीना शुरू किया. फिर जब भी विस्की पीते हैं ना, आइडियाज़ बहुत अच्छे आते हैं.
ओके,
है ना, ड्राई की होगी.
हाँ
तो विस्की पीने से आइडियाज़ अच्छे आते हैं, बट एक पैक पीने से नहीं आते. तो एक पैक पीने से नहीं आए, तो हमने दूसरा पैक बनाया. तो दूसरे पैक के बाद हमें रियलाइज हुआ कि वॉट इफ पेशेंट्स को टेस्टिंग सेंटर ना जाना पड़े और टेस्टिंग सेंटर उनके घर पे आ जाए. तो क्योंकि जब तुम दारू पी रहे होते हो तो पॉसिबिलिटीज आर इनफिनाइट,
राइट?
तुम बहुत ही क्रिएटिव होते हो. तो यही हुआ उस टाइम, मैं और पापा तो बहुत ही क्रिएटिव जोन में थे, एंड हमने सोचा कि इंस्टेड ऑफ पेशेंट्स गोइंग टू द हॉस्पिटल, व्हाट इफ द हॉस्पिटल कम्स टू देम. तो हमने सोचा कि एक ऐसा व्हीकल हो, एक ऐसी गाड़ी हो जो गाड़ी पेशेंट्स के घर तक जाए या उस सोसाइटी तक जाए और उन्हें टेस्ट कर ले, एंड उस गाड़ी का जो एटमॉस्फियर है अंदर का वो बहुत ही सेफ एंड स्टराइल हो. फिर हमने सोचा गाड़ी क्यों, ये चीज बस में भी नहीं हो सकती. फिर मैं पापा ने कहा बस में भी हो सकती है. मैंने कहा पापा लेकिन पैसे तो दे ही नहीं रहा भैया, हमें खर्चा भी हो गया उसमें. तो तब मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन था, माय डैड ऑलवेज यूज्ड टू से दैट योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, एंड एक बहुत ही फेमस कोट है एंड मैं इस पर बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ. इट्स नॉट वॉट यू नो, इट्स नो हु यू नो. तो मैंने अपने नेटवर्क में सर्च करा, पापा ने अपने नेटवर्क में सर्च करा, एंड फाइनली वी वर एबल टू रेज फंडिंग फॉर दैट. इन अ मैटर ऑफ 10 डेज हमने क्लोज टू 10 लाख रुपीज़ रेज कर लिए, देन हमने एक बस का जुगाड़ कर लिया, वी वेंट टू द पुलिस एंड पुलिस ने एक हमें अपनी पुरानी बस दे दी एंड उस पुरानी बस को हमने पूरा फुल फ्लेज्ड एक कोविड टेस्टिंग मोबाइल क्लिनिक बना दिया एंड उसके अंदर हमने बायोटेक लैब के प्रिंसिपल फॉलो करे जिसकी वजह से पूरा एनवायरनमेंट स्टराइल रहता था एंड पूरा सेफ रहता था फॉर द मेडिकल वर्कर्स. So the initiative was so good that our DM sir won a lot of awards because of that project. That project was flagged off by Honorable Chief Secretary of Delhi, Vijay sir ne inaugurate kiya tha. And post that project, a lot of states replicated it. So bahut sari states ne initiative replicate kar. And that initiative won Scotch Award. तो जो एक स्कॉच अवार्ड्स होते हैं दोज आर क्वाइट रिप्यूटेड अवार्ड्स, तो उस इनिशिएटिव को वो अवार्ड मिला. सो द फंडामेंटल ऑफ ग्रो डीजल हैज बीन सॉल्विंग प्रॉब्लम थ्रू इनोवेशन. सो हमने इनोवेशन के थ्रू प्रॉब्लम भी सॉल्व करी, हमने एक सोसाइटी में एक इम्पैक्ट क्रिएट करा एंड हमने अपने नेटवर्क के थ्रू अपने फंडिंग रेज करी, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करा. क्योंकि लेट मी टेल यू, वो टाइम था लॉकडाउन का.
Okay.
तो हम किसी भी शॉप से जाके सामान नहीं खरीद सकते थे. इट वॉज जस्ट द पीपल आई न्यू, माय डैड न्यू, हम शॉपकीपर्स को जाते थे, तो समहाउ वी वर एबल टू प्रोक्योर थिंग्स. सो इन 10 डेज वी एग्जीक्यूटेड दैट प्रोजेक्ट ऑफ दैट स्केल. सो आई थिंक दैट वाज वन बिग थिंग दैट आवर टीम वाज एबल टू अकम्प्लिश एंड अ लॉट ऑफ लर्निंग्स वर देयर. सो तब से लेके अभी तक जनवरी 2022 तक वी हैव बीन एबल टू सर्व मोर देन 2 लाख पीपल. Nice. And we have been able to provide them with free vaccinations and free testing services in association with our corporate partners who donated funds for our project and in association with Delhi and Haryana government.
That's nice. अच्छा आपकी जो phase आया था जब COVID का, तो आपने उसको कैसे deal किया था?
यार COVID जब मेरे को हुआ था, honestly I was fine. बट आई रियलाइज कि मेरे को थोड़ा सा अपने पेरेंट्स को लेके थोड़ा सा कंसर्न था एंड बट थैंकफुली एवरीथिंग वाज फाइन. हम सबको कोविड हो गया था, एक टाइम पे हो गया था बिकॉज मैं डैड को लेके काफी वो था बिकॉज ही हैज अ मेडिकल हिस्ट्री एंड वी वर्किंग फॉर दिस कोविड प्रोजेक्ट ऑल्सो. सो हम लॉकडाउन के टाइम वी वर ट्रैवलिंग एंड वी वर वर्किंग, सो थोड़ा सा कंसर्न था. बट देन आवर फैमिली गॉट कोविड एंड थैंकफुली वी ऑल वर आउट ऑफ इट. सो All our family was safe and sound, so I'm happy about it.
अच्छा जो ambitious लोग होते हैं जैसे कि आप हो, उनको कभी भी ना सुनने की आदत नहीं होती है. Like ये काम कैसे नहीं हो रहा है, ये काम क्यों नहीं हो रहा है, ये होके रहेगा. अच्छा यहाँ हम लोग के podcast में हम लोग सिर्फ लोगों की success stories ही नहीं, उनकी mistakes भी बताते हैं audience को ताकि वो लोग उस चीज़ों को repeat ना करें. Like तो क्या आपकी life में कोई ऐसी story रही है जिसमें आपने कहा और नहीं ये चीज़ कैसे नहीं हो सकती, वो चीज़ और बिगड़ गई है, कोई भी ऐसी चीज हुई है,
कोई
पर्टिकुलर चीज है उसमें आपने बिल्कुल एफर्ट्स डाल दिए हैं कि ये चीज होके रहेगी और फिर वो चीज फेल हो जाती है?
See, I'll tell you,
और ये किसी भी चीज को लेकर के हो सकता है, लाइफ, रिलेशनशिप, करियर, किसी भी चीज को लेकर के. अगर थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो तो मैं उसको एडिट करके डालूंगा.
No, no, not a problem. In fact, I have a tattoo in my left hand and the tattoo says Miraki. So I got this tattoo made in probably year 2015 or 2016 and it's a Greek word which means to do something with love, creativity and soul. So I started applying this to everything I when I say when I own something I apply this. If we karna hai to pura miraki ke sath karenge warna nahi karenge. So thankfully jaise all these things that happened pura ye Red Bull wala hua, then this COVID project happened and there have been multiple projects that we have done throughout my short career till now. So I've done everything with Miraki and agar maine us pe thaan liya ki wo karna hai, I made it happen and touch wood abhi tak koi failure kuch failure rate professionally nahi raha. Talking about relationship aspects, I would say not just girlfriend boyfriend wala relationship but any relationship. During my projects I have spoiled a lot of relationships, I would say, because a lot of times there were my teammates who were not able to do something or they were not able to deliver as per my expectations. So that relationship probably, I think I failed that particular relationship. I have failed quite a lot of them because sometimes you know you expect a lot from people. So basically I think professionally speaking I have spoiled a lot of relationships due to my work, and probably it's the reason here that a lot of times I was expecting too much out of people, and that expectation led to a lot of disappointments. So because of projects, I have had a lot of fights with the project managers and project engineers who were involved in that particular project. And I feel I have failed in those particular aspects, where I felt that that particular resolution usko thoda better tarike se handle kar sakte tha. But you know, when you have deadline around, aapko koi important project execute karna hai, and there's a lot of pressure. So maybe due to that pressure was vented on my teammates, because of the because of that, a lot of people left us. A lot of good people left us. So I think that is one aspect that I really need to work on, and I'm slowly working on it to be a better person and a better leader.
Right. अच्छा कोविड के टाइम में जब फल सब्जियां कुछ भी अगर आती होंगी तो आप धोखे ही खाते होंगे ना? आज तक धोखे कितने खाए?
क्या भी अच्छा क्वेश्चन. गुड वर्ड प्ले, गुड वर्ड प्ले. काम में या फिर पर्सनल लाइफ में?
जो भी आप.
So yeah, I think there have been
जो भी मेजर हो
both front में we have had a lot of धोखास. So ऐसा हुआ है कि हमने वेंडर्स को पैसे दे दिए हैं, उन्होंने काम डिलीवर नहीं करा, ये तो बहुत हुआ है. मतलब I think मैं काउंट करना शुरू करूँ, I'll probably forget. So ऐसा बहुत बार होता है दैट आप किसी को काम आउटसोर्स करते हो, किसी को कुछ काम देते हो, द मोमेंट यू गिव देम सर्टेन मनी एंड कभी कभी वो चले जाते हैं. सो होता है इंडस्ट्री में, काफ़ी लोग करते हैं, बट देर आर लॉट ऑफ गुड पीपल, एथिकल वेंडर्स होते हैं, एथिकल पीपल होते हैं. बट या वेंडर चीटिंग वगैरह वो सब हमारे साथ हुआ है,
काफ़ी वो सब चलता रहता है,
चलता रहता है. एवरी डे वी आर ट्राइंग टू बिल्ड आवर प्रोसेसेस बेटर सो दैट वी शॉर्टलिस्ट द राइट वेंडर्स, द राइट पीपल टू एग्जीक्यूट द राइट प्रोजेक्ट.
अच्छा मैंने कल आपका गार्डन देखा था टेडेक्स में, टेडेक्स की बात कर ली है क्योंकि वो कल रात से रिपीट हो रहा है. नेचर से काफ़ी कनेक्ट हैं आप, अपने गार्डन के बारे में थोड़ा सा बताइए, नेचर के बारे में आप कैसे कनेक्ट हैं, और कोई अगर एक स्टोरी साथ में हो उस गार्डन के साथ आपकी.
तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. माय दादू वाज अ बायोलॉजी टीचर एंड स्कूल टीचर थे वो. एंड so when he was building this house जिसमें आज हम रहते हैं, तो उन्होंने सिर्फ 70% हाउस को कंस्ट्रक्ट कराया, एंड 30% हाउस में उन्होंने कहा कि यहाँ पे हम गार्डन बनाएंगे, एंड उन्होंने मैंगो ट्री प्लांट करा वहाँ पे. सो there's a saying that आपके दादाजी एक बीज लगाते हैं, एंड जो आपके ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं वो मैंगो का मजा लेते हैं. तो यही हुआ आई थिंक. दादू ने एक बहुत अच्छा गार्डन दिया हमें, एंड स्लोली जो था मेरी मॉम का बहुत इंटरेस्ट आया गार्डनिंग में, प्लांट्स में. मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, मेरी मॉम की प्रायोरिटी नंबर वन है मेड्स, जो हमारे घर पे हाउस हेल्प्स होती हैं वो, सेकंड नंबर पे प्लांट्स, एंड प्रोबेबली शायद 10th 11th नंबर पे मैं एंड मेरा भाई. सो माय मॉम लव्स आवर प्लांट्स लॉट, सो उन्होंने उन्हें गार्डनिंग का बहुत शौक है. देन उन्होंने स्लोली ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे गार्डन में शुरू करी. सो जो भी हमारा फूड वेस्ट होता था उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट करा, एंड देन हमने अलग अलग चीज़ें प्लांट करी, मम्मी ने प्लांट करी, एंड उन्हें ग्रो करा. एंड उस गार्डन में हम छोटे छोटे, बहुत ही छोटे स्केल पे वी डू ऑर्गेनिक फार्मिंग फॉर आर ओन नीड्स. सो मेरे दादू ने एक चीज़ करी थी स्टार्ट, एंड मैंगो ट्री भी लगाया था, एंड द ग्रैंड चिल्ड्रन टुडे वी एंजॉय दोज मैंगोज, एंड वी एंजॉय दैट गार्डन इज वेरी स्पेशल. कोई भी मेरे सारे फ्रेंड्स वगैरह आते हैं, हम सारी पार्टीज वहाँ करते हैं, पूरा नाइट आउट करते हैं. So I have a friend who's sitting right there, Tavish right there. Every time he comes, he does a karaoke and he raps Rap God. Okay. No party is finished till the time he raps Rap God. we'll make him rap.
Yeah. अच्छा अब तक आपने कितने डेट किए? अच्छा मैं एकदम से चेंज कर दे रहा हूँ. और उनमें से सबसे अच्छी कौन थी?
नहीं, ये नहीं जा रहा है.
अच्छा
ऑफ द रिकॉर्ड बताऊंगा.
ऑफ द रिकॉर्ड
अच्छा
इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में कर सकते हैं.
श्योर.
अच्छा ठीक है, अगर इस पॉडकास्ट पे
शादी की बात करेंगे अगर ये क्वेश्चन.
अच्छा नो रिस्क.
नो रिस्क.
बट अच्छा एक काम कर सकते हैं, इस पॉडकास्ट पे अगर 50,000 व्यूज आ गए तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में क्वेश्चन का आंसर करेंगे और आई विल मेक श्योर दैट सर आंसर कर दे.
ठीक है डन. 50K
ओ गांधी डन, जल्दी कर दे. अच्छा एक डेली रूटीन में लाइक कुछ लोग होते हैं मॉर्निंग पर्सन, कुछ लोग होते हैं देर रात जगते हैं. ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है क्योंकि पॉडकास्ट में मैं भी कुछ अपने क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ जिससे मेरा भी कुछ बेनिफिट हो जाए. ऑडियंस का तो होता ही है इंडियाज मोस्ट क्रिएटिव पॉडकास्ट. तो मेरे माइंड में ये क्वेश्चन था, जैसे आप सुबह जल्दी जगते होगे, मैं रात भर जग सकता हूँ बट सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, तो एक परफेक्ट रूटीन आपके अकॉर्डिंग क्या होता है कि सुबह उठो काम करो या फिर.
आई थिंक मेरा बहुत ही सिंपल सा मानना है, दुनिया में हज़ार तरीके की आइडियोलॉजीज होती है, हज़ार तरीके के परसेप्शंस होते हैं एंड देर इज नो सेट पैरामीटर, देर इज नो सेट रूल. मैं सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव आज तक लाइफ में था वो जब मैं रात भर जागा हूँ, जब सब साइलेंट होता है. बट विद टाइम आई रियलाइज कि सुबह उठना इज समथिंग दैट इज मोर बेनिफिशियल फॉर मी एंड माई स्केड्यूल एंड माई वर्क. सो अभी बहुत ही रिसेंटली मैंने वापस सुबह उठना शुरू किया. देयर वाज अ टाइम मैं जब वापस 6 बजे सुबह उठना शुरू कर दिया था बट पास्ट कुछ मंथ से मेरा स्केड्यूल थोड़ा सा स्क्रू अप हो गया था. बट नाउ आई ट्राई टू टर्न माई फोन अवे एट 9:30 और सो एंड बाय 10:30 और 11 मैक्स आई स्लीप. सो आई स्लीप एंड आई वेक अप and the first thing thankfully of Delhi mein post covid gym khul gaye. So now in morning I go to the gym.
Abhi recently
wapas resume kara. So I go to the gym. Gym se I come back and then I take a bath, take a shower and then I disperse for work. So I would say there is no set parameter, koi aisa set rule nahi hai. And do what makes you comfortable, jo tumhe productivity wise theek lagta hai go for it, there is no set parameter. But personally, if you ask me, I prefer being a morning person.
अच्छा लोग जो अपने सपने देखते हैं जो पूरे नहीं कर पाते हैं, मे भी हो सकता है करियर वाइज या फिर रिलेशनशिप वाइज किसी भी चीज़ को लेकर. मेरा पर्सनल करियर को लेकर के ये क्वेश्चन है कि मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस की मैंटेलिटी ये होती है, ऑडियंस सॉरी पब्लिक की मैंटेलिटी ये होती है कि इंजीनियरिंग बीटेक एमबीबीएस यही सब चीज़ें चलती हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर मैनी करियर ऑप्शन लाइक एडिटिंग डिजाइनिंग सिनेमाटोग्राफी सिंगिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो उस मैंटेलिटी को कैसे चेंज कर सकते हैं लोग, मतलब जो यूथ देख रहे हैं अभी, लाइक मे बी बहुत लोग होंगे जो लोग ज़बरदस्ती IIT में घुसने की कोशिश कर रहे होंगे क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं है तब भी, क्योंकि फैमिली प्रेशर है और सुसाइड केसेस भी बहुत होते हैं इस चीज़ के लिए. तो वॉट डू यू थिंक हाउ यूथ कैन चेंज दिस मैंटेलिटी ऑफ योर पेरेंट्स.
So I think good question and very good question rather. When I was in my college, I was a part of my ESL, entrepreneurship cell hota tha my college mein. And usme ek humne na, I was probably in my third year, humne ek event organize karaya. And that event was themed unconventional careers. And us event mein humne 7 लोगों को इनवाइट करा था, 7 स्पीकर्स को इनवाइट करा था हु आर इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज ऑल टुगेदर. एक हमने यूट्यूबर को करा इनवाइट, एक हमने सिंगर को करा, एक हमने ऑनलाइन मार्केटिंग वाले को करा. सो एवरीथिंग दैट वाज अनकन्वेंशनल. मैं बात कर रहा हूँ अभी 2015 या 2016 की, प्रॉब्ली 6 ईयर्स बैक. तो तब हमने एक इवेंट कराया था एंड इट वॉज पूरे एक ऑडिटोरियम में हमने इवेंट कराया था एंड वी ऑर्गेनाइज एवरीथिंग इन अ मैटर ऑफ 1 वीक. And 1 week में पूरा ऑडिटोरियम was like, I think 200-250 लोग were there. Staircase पे there were people sitting and the event was such a hit because I think a lot of people felt the need of it. कि हम भी सुनना चाहते हैं कि क्या है unconventional careers, क्या होता है. A lot of times हमें options नहीं दिखते because हर किसी का एक सोर्स होता है जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है. बहुत लोगों के पेरेंट्स होते हैं, बहुत लोगों के फ्रेंड्स होते हैं. तो उसी नॉइस में उसी नॉइस को इंटरप्रेट करके हम कोई डिसीजन ले लेते हैं. सो लेट्स से दैट बहुत लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाते. पेरेंट्स ने कहा इंजीनियरिंग करनी है, डॉक्टर करना है, दे वेंट फॉर इट. कुछ लोगों का किसी का कोई दोस्त जा रहा है, लेट्स से मेरा जो फ्रेंड है एक कह रहा था यार, मैंने पूछा यार क्यों कर रहा है बीकॉम, कह रहा है यार वो मेरी गर्लफ्रेंड जा रही है, मैं जा रहा हूँ इसलिए. सो आई थिंक सबके जो सोर्सेज होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो किस टाइप का आप डिसीजन फॉर्म करते हो, इट अ लॉट ऑफ इट गोज टू द पीपल यू आर सिटिंग विद, द पीपल यू आर इंटरेक्टिंग विद. सो आई वुड से दैट इफ पीपल जेन्युइनली वॉन्ट टू एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स, ट्राई टू चेंज योर सर्कल और ट्राई टू चेंज वेयर यू गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम. Probably YouTube पे कोई ऐसे influences को different, you follow different different type of people, you follow different different type of topics, and you come to know a lot of options are there. So again, I am not a career counselor here. I am ऐसी advice कोई नहीं देता, ठीक है. So अपनी research करो, and there are heck lot of options. मतलब मैं अभी recently एक पता नहीं कौन सा product था वो, मैंने ये सोचा कि यार ये प्रोडक्ट बेच के भी कोई इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहा है, मतलब दैट आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट दैट प्रोडक्ट, दैट वाज अ वेरी वेरी स्मॉल समथिंग, बट या थिंग्स आर हैपनिंग. सो एंड टुडेज वर्ल्ड देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, लाइक देयर आर इनफिनिट अपॉर्चुनिटीज, स्पेशली विद इंटरनेट एंड कंसीडरिंग द वेब 3 इज कमिंग. सो देयर आर जस्ट एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, सो वी नीड टू रियली थिंक अ लेवल अप फ्रॉम द स्कूल्स एंड कॉलेजेस.
एक परफेक्ट रिलेशनशिप आपके लिए क्या होती है?
बिजनेस रिलेशनशिप या
पर्सनल
रिलेशनशिप?
अच्छा ठीक है, इसका आंसर आप दे सकते हो.
हाँ दे रहा हूँ. So I think although I refrain from saying that there's something known as perfect relationship, fairy tales probably yes, in reality maybe no, I might be wrong. But I feel that the most important quality in any relationship jo honi chahiye, that should be a clear cut understanding. So let's say that even if someone is in a long distance relationship, there has to be some clear cut understanding. But I'm also open with the fact that anything can happen. I've had a breakup in the past, and that one breakup, that one heartbreak told me that anything can happen. Okay, we all are young right now, and be open to any possibility. So I think being in relationship is absolutely fine, but at the same time I feel that I'm emotionally independent, and people should be emotionally independent as well. So do not be in a relationship just because that person makes you happy. Be in a relationship with that person if that person is making you grow, and you are helping that person grow.
Right.
I think that is probably something close to a perfect relationship.
अच्छा अभी आपने एक word use किया breakup, तो यहाँ पे काफी लोग हैं जो सुन रहे हैं, उनके साथ भी ये same incident होते हैं and they like just उसके बाद वो लोग किसी पे trust नहीं कर पाते हैं. तो उस चीज को लेके आप क्या कहोगे, because मैं भी उस phase से एक time पे गुजरा था. और इस question का answer देना सच में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है. तो what do you think, what is your perspective towards it?
See, I think जो हमारे formative years होते हैं, never. मतलब probably after my first heartbreak, I inclined myself a lot towards my personal growth. So मैं अपनी personal growth के towards इतना inclined हो गया था that honestly मेरे को 2-3 महीने बाद honestly फर्क नहीं पड़ा. मतलब देर सिंह ना लोग दारू पी के एक्स कॉल कर देते हैं, नेवर डिड इट, नेवर एवर, एंड ट्रस्ट मी गाइस विल बी फाइन. सो आई थिंक जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ, फोकस ऑन योर ग्रोथ, एंड रेस्ट इफ एनीथिंग हैज टू कम इट विल कम, यू वोंट हैव टू फोर्स इट ऑनेस्टली.
राइट. अच्छा हम लोग बहुत बातें कर चुके हैं और हम लोग को और भी बातें करनी है, बट एक्चुअली थोड़ी सी लिमिट होती है कि हम लोग इतनी देर का ही पॉडकास्ट सीरीज कर सकते हैं. बट सीरियसली मुझे आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस और पूछने हैं और वो वाइब लिटरली मैच हो गई है. एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, उसके बाद हम लोग इस पॉडकास्ट को रैप अप करेंगे, ठीक है. और तुम लोग भी थोड़ा सा इंतजार कर लेना नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए, 50,000 व्यूज जल्दी से कर देना वो वाले फिर से. ओके, सो लास्ट क्वेश्चन इज दिस, कि जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज होती है, उनको आप लोगों की लाइफ से कैसे रिलेट कर सकते हो, कैसे कनेक्ट कर सकते हो? और जो लोग हैं, जो इंडिया के लोग हैं, वो लोग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे दे सकते हैं?
फिर दो अलग अलग क्वेश्चन है,
दो अलग अलग क्वेश्चन है बट एक साथ ही है.
सो आंसरिंग टू द लैटर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज लोग अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं इन फॉर रिन्यूएबल एनर्जी या फिर स्पेसिफिकली अबाउट इन द बायो सेक्टर. सेग्रीगेट योर वेस्ट, ऑनेस्टली दैट इज द ईजिएस्ट थिंग दैट यू गाइस कैन डू. सूखा कचरा अलग बिन में डालो, गीला कचरा अलग बिन में डालो. And trust me, this one initiative can do big wonders. बहुत बार ये होता है कि मैं ये सुनता हूँ, लोग बोलते हैं दैट हम तो अलग अलग कर देते हैं बट वो जो कूड़े वाला आता है ना वो वापस मिक्स कर देता है, तो हम सोचते हैं कि मिक्स करके ही डालें. आई थिंक यू डू योर जॉब, आप अपना जो काम सही करो, वो जो कर रहे हो उसको करने दो. अगर आप अपना काम अभी सही कर रहे हो, फाउंडेशनली आप अपनी चीजें सही कर रहे हो, जो आगे वाला स्टेप है वो हो या ना हो उस पर आपका ना ही कोई कंट्रोल है ना ही होना चाहिए. आप अपना काम सही से करो एंड जस्ट सेग्रीगेट योर वेस्ट, रेस्ट एवरीथिंग विल फॉलो. सेकेंडली यू आस्क दैट रिलेटिंग रिन्यूएबल एनर्जी विद पीपल्स लाइफ, आई वुड रादर से आई वुड रादर फ्रेम इट नॉट रिन्यूएबल एनर्जी, आई वुड से सर्कुलर इकोनॉमी. सो व्हेन वी टॉक अबाउट सर्कुलर इकोनॉमी, व्हाट इज इट? हमने आज पिज्जा मंगवाया, पिज्जा खाया, डब्बा फेंक दिया. नाउ इन सर्कुलर इकोनॉमी, ये जो गत्ते का डब्बा मैंने फेंका है ये अगर कबाड़ी वाला ले जाएगा, इसको रिसाइकल करेगा एंड वापस मार्केट में एक न्यू प्रोडक्ट की तरह ले आएगा. सो आई फील जो हमारे लिए वेस्ट है वो किसी के लिए वैल्यू था. हमने तो बस पिज्जा खाया, डब्बा फेंक दिया, बट यही डब्बा एक कबाड़ी वाला इसे बेच के पैसे कमाएगा एंड वो रिसाइकलर है, वो रिसाइकल करके उसे बेच के पैसे कमाएगा. सो अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट इज वेस्ट इन योर आईज इन समवनस आईज माइट बी ऑफ वैल्यू इन समवन एल्सस आईज. सो इफ यू एवर फील कि यू आर नॉट बीइंग रिस्पेक्टेड बाय योर बॉस, बाय योर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड और योर पेरेंट्स एंड यू फील लाइक अ वेस्ट, just have this in mind that just because you might be waste for someone, you cannot be valuable to someone else. So even if you get that feeling ki tumhe koi waste ki tarah treat kar raha hai, let me tell you, there will be people who will see value in you. So that's what we do at Grow Diesel, we convert waste into true value, and that is what people can do with themselves.
That's so beautiful lines you said. Aur ज़िंदगी का मतलब क्या होता है वो इस चीज़ से देखा जा सकता है, वो आपके एम्बिशंस, आपके ड्रीम से देखा जा सकता है. एक लास्ट स्टैंडिंग नोट, जो आप कोई भी मैसेज, कुछ भी जो आप हम लोग के ऑडियंस को देना चाहते हैं हम लोग के पॉडकास्ट के थ्रू, बिकॉज दिस इज इंडियाज़ मोस्ट ग्रेट.
सो जस्ट वन लास्ट एडवाइस फॉर ऑल द पीपल हु आर लिसनिंग टू आर्यन, ही हैज़ बीन अ ब्यूटीफुल होस्ट टुडे, tonight, today evening probably, yeah. Tonight will be, yeah, after this. So one advice, just one takeaway, if you have to do, focus on building your network, focus on building, growing your quality network, because you have absolutely no idea kaun kab kaise kahan kaam aa jayega, you have absolutely no idea. So focus on making quality relationships with people. And when I say networking, it is not exchanging cards ki tum kisi conference mein gaye, तुमने कार्ड एक्सचेंज करा, दैट इज नॉट नेटवर्किंग. फॉर्म रियल रिलेशनशिप्स विद पीपल एंड फाइंड इनोवेटिव वेज टू डेवलप दैट रिलेशनशिप. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, बिकॉज़ योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क.
ट्रू. थैंक यू सो मच ब्रो फॉर कमिंग.
थैंक यू सो मच, हैड अ ग्रेट टाइम.